ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपलवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मीति ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः आदिगुरवे नमः जुगादगुरये नमः सद्गुरये नमः श्रीगुरुदेवाय नमः ॐ शान्तिः 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 बोलो सच्चिदानन्द भगवान् की जय श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय सतगुरुदेव महाराज की जय श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय घट घट में व्याप्त सर्वंतर जामी प्रभु पिता परमात्मा के चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए सर्वकाल वंदे ब्रह्मलीन वेदांत के श्री श्री स्वामी निर्मल जी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन अनंत श्री विभूषित परम वीतराग विरक्त शिरोमणि निर्मल पीठाधीश्वर श्री 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 महंत जी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन परम श्रद्धे स्वामी निर्मल चेतन जी महाराज तथा उपस्थित संत वृंद भक्त वृंद सबका अभिनंदन करते हैं। महापुरुषों की कृपा हो रही है उन्हीं के पावन तप स्थान पर बैठ करके हम आत्मिक चर्चा आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। बहुत लोग इस संसार में आते हैं और संसार के भोग पदार्थों में लिप्त होते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। किसी किसी का भाग्य होता है कि महापुरुषों की संगति मिलती है, अपने कल्याणार्थ उसको चेतना मिलती है, सावधान कोई कोई होता है। बहुत लोग पूरा संसार पीत्वा मोहमयी परमाद मदिराम, जो संसार के लोग हैं वो मोह रूपी मदरा का पान करके सोए पड़े हैं। सभी लोग मोह के विषाद अपने जीवन की क्रिया चला रहे हैं। जब किसी को सत्संग मिलता है, आत्मिक चर्चा भगवत चर्चा श्रवण करने को मिलती है, तब इस मोह की निवृत्ति होती है। मोह की निवृत्ति के पश्चात भगवान प्रभु पिता परमात्मा के चरणारविंदों में प्रेम उत्पन्न होता है, अनुराग होता है, जिससे फिर कल्याण होता है। इसलिए प्रभु की कृपा जो हम लोगों को सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, पावन वाणी में गुरुदेव जी महाराज इस जीव को प्राणी को व्यक्ति को सावधान करते हैं। वेद भगवान भी ऐसा उद्घोष करते हैं, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत शोरच धारा निशिता दुरत्यया दुर्गस पथत कवयो वदंती। वेद भगवान कहते हैं कि उठो जागो, उत्तिष्ठित जागृत उठो जागो, प्राप्य वरान निबोधत जाकर के जो तत्ववेता महापुरुष हैं उनसे तत्व की जिज्ञासा के द्वारा उपदेश ग्रहण करो। ये जो मार्ग है ये कैसा है? छोरस्य धारा निशिता दुरत्यया, ये कहते जो मार्ग है ना, छुरे की जैसे धार होती है ना, छुरा होता है दोनों तरफ से तीखा होता है। छोरस्य धारा खन्यो तिखी वालो निकी, इतना ब्रीक और तीखा है, कठिन है ये मार्ग जो आध्यात्मिक मार्ग है। छोरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गस, ये कहते हैं बहुत कठिन मार्ग है। कवयो वदंती, जो तत्ववेता जो चिंतक लोग हैं वो कहते हैं, इसी को दृढ़ करवाते हैं पावन वाणी में गुरुदेव कि चेतना है तो चेतले निस्तिन में प्राणी, छिन छिन औध बिहात है फूटे घट जो पानी। और भी कहते हैं जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया, जाग जाओ जाग जाओ, ऐसा होका देते हैं कि ऐ गाफल प्रमाद में भूल में सो करके अपनी जिंदगी क्यों व्यतीत कर रहा है, जाग जाओ सावधान हो जाओ। जो तन उपजा संग ही सो भी संग ना होया, जिस संसार के पीछे हम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, बाहर के पदार्थों की बात बहुत दूर है। शरीर के लिए कहते हैं कि अंत समय जब तेरे को जहाँ से जाना होगा तो संसार के पदार्थों को इकट्ठा करते हो किस लिए, कि हमारा साथ देंगे, हम इनको देख करके सुखी रहेंगे। तो कहते हैं संसार के दूसरे पदार्थ तो साथ छोड़ ही जाएंगे, जो तन उपजा संग ही सो भी संग ना होया। ये जो शरीर लेकर के तुम आए हो ना, शरीर के साथ, ये शरीर भी अंत में साथ नहीं देता है। शरीर के साथ संबंध रखने वालों की तो बात ही दूर है, शरीर भी साथ नहीं देता। जो तन उपजा संग ही सो भी संग न होया, इसलिए कहते हैं कि चेतना है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी छिन छिन औध बिहात है। हम लोगों को लगता है कि हम 2 साल के हो गए, 3 साल के, 5 साल के, लेकिन उल्टा हम समझ रहे हैं, हम कहते कि हम बड़े हो गए। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि तुम बड़े नहीं हो रहे, घट रहे हो। आपकी आयु समाप्त हो रही है। हम कहते हम बढ़ गए हैं, बड़े हो गए हैं, बड़े नहीं छोटे हो रहे हैं, घट रहे हैं। छिन छिन औध बिहात है, अब तो जो उम्र है ना एक क्षण क्षण में जा रही है, एक क्षण जो बीत जाएगा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे को उस क्षण की महिमा का नहीं मालूम, महत्व नहीं मालूम। हम तो उसका कभी ख्याल ही नहीं किया कि जो श्वास हमारा निकल गया वो आएगा नहीं बाद में। ऐसा भी कहते हैं कि हालत हमारी कैसी है, बहती जात कदे दृष्ट न धारत। हमारी जो उम्र है ना वो बहती जा रही है, जैसे नदी बह रही है ना ऐसे श्वासों की पूंजी बह रही है। बहती जात कदे दृष्ट न धारत, कभी भी हमारी दृष्टि नहीं जाती इधर की हमारे श्वासों की पूंजी जा रही है। और किसी की पूंजी का जो नहीं ख्याल रखता उसको अंत में कंगाल होना पड़ता है। जो हमारे पास संसार की पूंजी है ना उसको हम कितना संभाल करके रखते हैं, उसका एक एक जो पैसा है हमारे दिमाग में होता है कि इतना है और आज इतना खर्च दिया, इतना बाकी बचा है, ये भी तो एक पूंजी है, श्वासों की पूंजी। इसकी तरफ कभी ख्याल नहीं किया कि जितने श्वास हमारे को प्राप्त हुए हैं उसके साथ में और तो कभी जुड़ना नहीं है। संसार की पूंजी का ब्याज मिल सकता है आपको, लेकिन श्वासों का नहीं मिलेगा। आधा श्वास भी आपको ज़्यादा कोई नहीं दे सकता कोई। तो वो पूंजी हमारी हर रोज़ समाप्त हो रही है। बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। जो मिथ्या मोह है ना उसी में बंधे हुए हैं, कभी भी ख्याल नहीं करते। तो इसलिए एक दिन ऐसा होगा जिस दिन उस पूंजी की समाप्ति हो जाएगी। गण घाले सब दिवस सास, गण घाले गिण करके दिए हैं हमारे को, नह बढ़न घटन तेल सार। तेल मात्र भी कहते हैं बढ़ नहीं सकते। तो जीवन लो रहे भरम मोह नानक तेउ गवार। जीवन लो रहे भरम, जो कहते जीवन में केवल भ्रांति और मोह के वशान हैं, नानक तेउ गवार। कहते गवार हैं, मूर्ख हैं, भूले हुए हैं, जो उस जीवन के श्वासों का ख्याल नहीं करते, पूंजी को संभालते नहीं। इसलिए कहते हैं ना सास सास सिमरहु गोविंद, एक एक श्वास में गोविंद का चिंतन होना चाहिए, तभी वो श्वास हमारे सफल हो सकते हैं। वृथा श्वास मत खोए, कोई भी श्वास वृथा बिना नाम के नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इसलिए गुरु नानक जी महाराज जी से पूछा था माता जी ने, तो उन्होंने उत्तर ये दिया था कि आखा जीवा बिसरै मर जाओ। वो कहते थे कोई घर का काम कर लिया करो, उसी चक्कर में सारा दिन पड़े रहते हो। तो महाराज जी कहते हैं कि माता जी मैं क्या करूं, आखा जीवा जितनी देर मैं प्रभु का स्मरण करता रहता हूं तभी तक मेरा जीवन है, बिसरै मर जाऊं, जब बिसर जाता है तो मेरी मौत हो जाती है, मृत्यु के समान हो जाता हूँ मैं, मुर्दे के जैसा हो जाता हूँ। आखण औखा साचा नाओ, लेकिन वो जो सत्य नाम है ना प्रभु का उसको जाप करना, स्मरण करना, चिंतन करना कठिन है, उधर नहीं ख्याल जाता। संसार का चिंतन बहुत सरल है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना उसको पहले कुछ भी मालूम नहीं होता संसार के बारे में, लेकिन जब थोड़ी सी उसकी आयु आगे बढ़ती है तो उसको संसार की पहचान कराई जाती है, उसको फंसाया जाता है कि संसार में। वो नहीं जानता किसी को, ना किसी के पहचान है उसकी, लेकिन उसको पहचान बार बार रटा के कराई जाती है, ये मामा है, ये चाचा है, ये डैडी है, ऐसे कहते हैं ना, तो उसको जोड़ते हैं जानबूझ के संसार में। थोड़ी सी जब बड़ा हो जाता है तो फिर ये भी नहीं कहना पड़ता, अपने आप ही जुड़ता जाता है सबसे। इंद्र की तरफ प्रवृत्ति अपने आप होती जाती है। लेकिन उसी बच्चे को जब भी कोई पूजा पाठ सिखाना हो तब देखिए कितनी परिश्रम लगता है, इंद्र की तरफ ख्याल नहीं आता जल्दी। आजकल की तो हालत ही ऐसी है कि रो रहे हैं माता पिता, तब भी उनके बच्चे कहने पर नहीं लगते। और संसार का ज्ञान कितना है उनको, जो कभी माता पिता ने सोचा भी नहीं होगा। तो उनको किसी ने क्या कहा है, किसी ने सिखाया थोड़ी है, अपने आप प्रवेश हो गए हैं। इसलिए आखण औखा साजा नाओ, जो सत्य नाम है उसका कहना ही बहुत कठिन है। जो झूठा नाम है संसार का, उसके लिए तो अपने आप प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए कबीर जी महाराज की पावन वाणी हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कबीर जी महाराज जी के पास एक दिन कोई योगी आ गया, जो हठ योगी होते हैं। तो उसको मालूम था कबीर जी बहुत बड़े भक्त मानते हैं, भक्त लोग इनको बहुत बड़े भक्त मानते हैं, भक्ति की महिमा इनको बहुत मालूम है। तो वो कहने लगा कि भक्ति का आनंद तो आप लेना चाहते हैं, लेकिन यदि उसमें मस्त होना चाहते हो तो हम आप एक बहुत अच्छा आपको एक उपाय बताते हैं। कबीर जी कहते, महाराज जी कहते, बताइए, हम तो भक्ति में मस्त रहना ही चाहते हैं, रहते ही हैं। वो कहते कि हम लोग भी समाधि लगाते हैं, आनंद लेते हैं, हम लोग भी योगी, लेकिन कैसे, हम थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, शराब तो उससे बहुत आनंद आता है। यदि भक्ति में आनंद लेना चाहते हो तो थोड़ी सी पी लिया करो शाम को। कबीर जी कहते बहुत अच्छी बात है। वो कहते आप पीते हैं क्या, हम नहीं पीते, हम ही तो पीते हैं। तो अच्छा आप भी पीते हैं। कहते और क्या, हम ही पीते हैं शराब। तो इस प्रकार चर्चा होने लगी। तो कबीर जी महाराज उसको निमित्त बनाते हैं और हम लोगों को सुचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि हम भक्ति का आनंद तो लेना चाहते हैं, लेकिन कैसे, जैसे वो योगी शराब पी करके मस्त हो जाते हैं ना, तो कहते हमारी समाधि लग गई है, ऐसे समाधि हमारी भी लगती है, लेकिन साथ में शराब भी पीते हैं हम लोग। शराब का मतलब नशा, जो हमारे को अपने आप को भुला देता है कि हम कहाँ बैठे हैं। तो कहते हैं मस्त हो गए। शराबी आदमी को तो नहीं पता चलता, थोड़ी देर के लिए संसार का नहीं पता चलता, भूल जाता है उसको, उसको घर के जो होते हैं ना उसके मेंबर वो भी भूल जाते हैं कि कौन हमारी माता है, कौन पिता है, कौन है पत्नी है, उसको ये भी भूल जाता है। तो संसार को भूलना तो उसका भी होता है, और जो वैसे समाधि लगाते हैं उनको भी संसार विस्मरण हो जाता है कि नहीं। तो अंतर क्या हुआ, तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि योगी आप लोग भी एक भट्टी बनाते हो, भट्टी के ऊपर एक बर्तन रखते हो, उसमें पानी डालते हो, उसके ऊपर एक ढक्कन रखते हो, उसमें से दो नाली लगाते हो और नीचे अग्नि जलाते हो, तब आप शराब बना करके निकाल के पीते हो ना संसार के रसों की, उस शराब को हम नहीं पीते, शराब तो हम ही पीते हैं। तो उसने कहा आप कौन सी शराब पीते हैं, आप अपनी शराब के बारे में बताइए। कबीर जी महाराज कहते हैं गगन रसाल चोए मेरी भाठी, संच महारस तन भया काठी, वा को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाओ, सहज कलालन जौ मिल आई, आनंद माते अनदिन जाई, चीतन चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया। उसको शराब भी बताते हैं और शराब पीने वाले की हालत भी बताते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं उनकी हालत क्या होती है, वो क्या क्या करते हैं शराब पी के, और कैसी शराब। वो कहते हम ही शराब पीते हैं, हमारी हालत क्या होती है शराब पी के, आप लोगों की क्या होती है, दोनों की बताएंगे आपको। क्योंकि आपकी शराब का हमारी शराब का अंतर है। जैसी कोई शराब पीता वैसी उसकी हालत होती है। शराब भी आप देखेंगे ना आप ठेके पर कितने प्रकार की होती है, तो जितना रेट होता है शराब का उतना ही उसका नशा भी होता है। कोई देसी पीता है, कोई अंग्रेजी पीता है, तो जैसी जैसी पीता है वैसा वैसा उसको नशा मिलता है। तो कहते हैं कबीर जी महाराज कि हम कौन सी शराब पीते हैं और कहाँ से बनती है वो। तो जो गगन रसाल जो सब में व्याप्त है ना, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद सबके अंदर जो परमात्मा परिपूर्ण है, उस ब्रह्म का जो आनंद है, उसका जो रस है। शराब का अर्थ क्या होता है, अंगूर डालते हैं या कोई चीज़ डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तो उसका रस निकाल के तो पीते हैं, उसी को शराब कहते हैं। रस, गुड़ का रस या फल का रस, फलों की शराब बनती है, गुड़ की बनती है, यानी उसका रस निकाल कर पीते हैं आप लोग। तो हम ही उस रस को पीते हैं, लेकिन हमारे पास कौन सा रस है। गगन रसाल, गगन मतलब आकाश को कहते हैं। गगन का अर्थ है व्यापक, जो व्यापक चेतन है, जो रसों का घर है, सारे संसार के रस उससे ही निकलते हैं। ऐसा जो रसों का घर है ना, या जो रसों का घर है दसम द्वार, वहाँ से झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द बिचारा। उससे जब झिम झिम धीरे धीरे टपकता है अमृत, तो उसको पीते हैं योगी लोग। तो कहते हैं कबीर जी महाराज कि हम लोग भी शराब पीते हैं, यानी ब्रह्मानंद जो सारे रसों का घर है वो ही हमारी शराब है, तो उसको हम पीते हैं। पीते कैसे हैं, उसको कहाँ से प्राप्त होती है, दसम द्वार से। यानी जब हम समाधि में स्थित होते हैं तो हमारे अंदर उस ब्रह्मानंद का चिंतन करते हैं, तो वो ब्रह्मानंद चूने लगता है। झिम झिम बरसे अमृत धारा, धीरे धीरे जैसे वर्षा होती है ना, धीरे धीरे और रस अंदर हमारे टपकता है, अनुभव होता है, तो उसको हम पीते हैं। तो उसको कहाँ से वो निकलती है, भट्टी कौन सी है, दसम द्वार रूपी भट्टी है, वहाँ से निकलती है। और कहते हैं भट्टी जलाने के लिए लकड़ी डालते हैं ना आप लोग, तो जो चेतन रूपी भट्टी है ना हमारी, ब्रह्मानंद को प्राप्त कराने वाली चेतन रूपी या ज्ञान रूपी अग्नि है, किससे निकलती है, अग्नि से बनती है ना। अग्नि जलाते हैं तो हमारे पास कौन सी अग्नि है, ज्ञान रूपी अग्नि है, उसके द्वारा हम। तो कहते हैं आपने लकड़ी कौन सी डाली है, हम तो बाहर की लकड़ियां डालते हैं, आपके पास ज्ञान रूपी अग्नि है, दसम द्वार रूपी भट्टी है आपके पास, तो उसमें अग्नि कौन सी डाल, उसमें लकड़ी कौन सी डालते हो। कबीर जी महाराज कहते हैं कि हमने शराब कौन सी इकट्ठी की है, महारास, जो संसार के रसों के सबसे उत्कृष्ट रस है, निज आत्मा का रस, महारस, उस रस को हमने इकट्ठा किया है, वो रस ही हमारी शराब है। तो हमारे पास दसम द्वार रूपी भट्टी है, ज्ञान रूपी अग्नि है, लकड़ी कौन सी है, तन भया काठी, काठी कहते हैं लकड़ी, ये जो स्थूल शरीर है यही लकड़ी डाली है उसमें। जब लकड़ी डाली है तो प्रज्वलित क्या हुआ, उस भट्टी में हमने क्या किया, चेतन जो भट्टी है ना, चेतन स्वरूप भट्टी, उसमें हमने उसका चिंतन करते करते क्या किया, या ये जो शरीर है इससे सेवा पूजा स्मरण आदि किया, इस शरीर को यानी लकड़ी बनाया, तो इस शरीर से, इस शरीर का देह अध्यास, लकड़ी जलती है ना पहले अपने आप को जलाती है तभी अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित कब हुई, कब प्रकट हुआ, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड कब निकला, वो हमारी ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हुई तो कैसे, लकड़ी कौन सी, कहते शरीर रूपी लकड़ी, तो लकड़ी को जला देते हैं ना, तो शरीर का क्या किया, शरीर का जो देह अध्यास था उसको जला दिया है, उसमें ज्ञान रूपी अग्नि में इस शरीर के देह अध्यास को डाल दिया हमने, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों का, या संसार का प्रपंच का जो अध्यास है ना, उस अध्यास को फूंक दिया हमने, या जो कर्मों का हमारे को अभिमान था वो कर्म भी उसमें जला दिए हमने। कर्म किस से होते हैं, शरीर से, इसलिए कहते हैं तन भया काठी। उस ज्ञान रूपी अग्नि में हमने इस शरीर रूपी अग्नि को लकड़ी को डाला है, यानी देह अध्यास को उसमें थूक दिया है हमने, तो जब वो अग्नि प्रज्वलित हुई तो क्या उससे प्राप्त हुआ, ब्रह्मानंद रूपी शराब प्राप्त हुई, उसको हम पीते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। वो कैसी है, वो शराब कैसी है, वो रस कैसा है, वो ऐसा रस है कि जब वो कोई उस रस को पान कर लेता है तो उसको संसार के जितने रस हैं, संसार के रस ही तो शराब हैं अनेक प्रकार के, उस दिन भी हमने बताया था ना, रस सोयना, रस रूपा, कामन रस, परमल की वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदर, रस मीठा, रस मास, एते रस शरीर के कह घटनाम निवास, ये सब रस हैं, यही तो शराब है। तो हमने वो सार ऐसा रस पिया है कि राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और, जो और रस थे ना, जो आपकी शराब थी बिसर गई, अब हमारे को उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब हमने कौन सी, राम रस पिया रे, हमने राम का जो नाम है ना, नाम रूपी रस पिया है, राम के नाम रूपी शराब पी है, तो जेह रस, जिस रस के आने से बिसर गए रस और, बाकी सारे नशे हमारे टूट गए। अब क्या है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, हमारे को भी चढ़ी रहती है, तो इसलिए कहते हैं ऐसा हमने जो शराब पी है। तो ये कहते हैं हमारी शराब का तो आपकी शराब का अंतर है, आप संसार के पदार्थों को इकट्ठा करके उसका रस निकाल के पीते हो, लेकिन हमारी ये शराब नहीं है, हमारा रस है ब्रह्मानंद, और उसमें अग्नि कौन सी है, ज्ञान रूपी अग्नि है, और शरीर जो स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर इसके द्वारा सेवा स्मरण चिंतन किया है, इसको काठी यानी लकड़ी बनाया है, तो करते करते इस शरीर का अभिमान छोड़ दिया है, देह अध्यास छोड़ दिया है, ये तो हमारी शराब और आपकी शराब का अंतर है, जोगी को कहते हैं। फिर कहते हैं जो आप लोग जड़ी शराब पीते ना, जो आपकी शराब है उसको पीने वाले का क्या हालत होती है, जो संसार की शराब पीते हैं उनको लोग क्या कहते हैं, बौरा कहते हैं, ये तो बौरा है, बावला है। तो कहते ओ आपको कहिए सहज मतवारा, लोग कहते हैं मतवाला है, बावला है, मूर्ख है जो आपकी शराब को पीता है, उसको लोग मतवाला बौला कहते हैं, लेकिन जो इस शराब को पीता है, हमारे वाली शराब को जो पीता है, बावला तो वो भी होता है, वो भी बावला हो जाता है, संसार की तरफ से हो जाता है, परमात्मा की तरफ से नहीं, जो उस शराब को पीता बाहर वाली को, वो परमात्मा की तरफ से बावला हो जाता है, संसार की तरफ जाग जाता है, उधर से बावला हो जाता है। तो कबीर जी कहते मैं खुद बावला हूँ, क्योंकि मैंने पी है ये शराब, मैंने पी है। कबीर जी महाराज ने एक वचन लिखा कि मैं बौरा सब खलक सयानी, मैं बौरा, सारी खलकत जो है बहुत सयानी है, चतुर है, मैं बावला हूँ, क्योंकि मैंने ये शराब पी है, इसलिए शराब पीने वाला बावला हो जाता है। मैं बौरा, मैं बावला हूँ, सब खलक सयानी, सारी खलकत सयानी है, चतुर है, मैं बौरा, کہتے آپ نہ کیے آپ نہ بورا رام کیو بورا، میں آپ تھوڑی بابلا ہوا ہوں، رام کیو بورا، میرے کو رام نے بابلا کر دیا، اس نے ایسی چراغ پلائی ہے کہ میں بابلا ہو گیا ہوں، آپ نہ بورا رام کیو بورا، میرے کو رام کے نام نے بابلا کر دیا ہے۔ تو کہتے کبیر جی مہاراج کی آپ کی شراب پینے والا ہماری شراب پینے والے کا انتر ہے، پیوت رام رس، جس نے رام رس روپی شراب پی ہے نا گیان بیچارا، ایسی شراب پینے والا کیسا ہے، گیانوان ہوتا ہے، بیچار کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ کو کہی ہے جو آپ کی شراب پیتا ہے سہج ہی لوگ کہتے ہیں یہ باولا ہے، جو ہمارے والی پیتا ہے نا پیوت رام رس، جس نے پیا ہے نا رام رس گیان بیچارا، وہ تو گیانی ہو جاتا ہے، بیچاروان ہو جاتا ہے، بدھیمان ہو جاتا ہے۔ پھر رہاؤ کے بعد میں کہتے ہیں جب کوئی شراب پیتا ہے نا، سنسار کے لوگ شراب پیتے ہیں، تو شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کو شرابی آدمی کو پھر بھوگ چاہیے، نشہ کس لیے پیتے ہیں، بھوگوں کے لیے، وشے بھوگنے کے لیے شراب پیتے ہیں کہ نہیں، تو ان کو بھوگ چاہیے، ان کو وشے کی واسنا ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں جاتے ہیں جہاں وشے وکاروں کا بہت زیادہ جھنڈ ہوتا ہے، وہاں جا کر کے بھوگتے ہیں، تو اس لیے ویشیا آدمیوں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں، تو کہتے ہیں کہ جب ہمارے والی شراب پیتا ہے نا کوئی رام رس والی، تو وہ بھی بھوگ کرتا ہے، جیسے آپ کو بھوگوں کی اچھا ہوتی ہے، تو ہمارے والی پینے پر جو بھوگ کی جدی اچھا ہوتی ہے، تو کون سا بھوگ، کون سی ویشیا، تو سہج کلالن جو مل آئی، کلالن کہتے ہیں ویشیا کو، تو جب ہمارے والا رام رس پیتا ہے نا جو، تو اس کے پاس شانتی آ جاتی ہے، وہ شانتی کے ساتھ مل کر کے آنند لیتا ہے، آپ بھی آنند لیتے ہیں، لیکن آپ وشے کا آنند لیتے ہیں، کامنی کا آنند لیتے ہیں، ہمارے جو پینے والے ہیں نا رام رس کو، ان کو شانتی مل جاتی ہے، تو شانتی کے ساتھ مل کر کے آنند ماتے، آنند میں مست ہو جاتے ہیں، آن دن جائی ان کی رات دن ایسے ہی ویتیت ہوتا ہے، شانتی کے ساتھ مل کر کے آنند سے جیوت رہتے ہیں، یعنی مست رہتے ہیں، ان کو پھر سنسار کے جو بھوگ ہے نا ان کی طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ چینت چیت نرنجن لایا، ایک تو یہ وشیشتا بتائی کہ آپ کی شراب پینے والا باولا ہوتا ہے، ہماری شراب پینے والا گیانوان ہوتا ہے، بیچاروان ہوتا ہے، اور شانتی کے ساتھ مل کر کے آنند میں رہتا ہے۔ آپ لوگ شراب پی کر کے پھر کیا کرتے ہیں، وشے بھوگ کرتے ہیں، تو ایک اور وشیشتا بتاتے ہیں کہ چینت چیت نرنجن لایا، جب کسی نے رام رس والی شراب پی ہوتی ہے نا تو کیا کرتا ہے، اس رام رس کے چنتن کرنے سے، رام رس کا پان کرنے سے اس کا انتہکرن شدھ ہوتا ہے، تو انتہکرن شدھ ہونے سے چینت چیت نرنجن لایا، اس نے چینت کہتے پہچان لیا ہے، جب رام رام کا چنتن کیا، بھجن کیا، انتہکرن کی شدھی ہوئی، تو اس کے چت کو اس نے کہاں لگا دیا، نرنجن، نرنجن جو انجن رہت ہے، مل رہت ہے، جس میں اودیا کی میل نہیں ہے، اجیان کی میل نہیں ہے، نرنجن ہے، کالما نہیں ہے سنسکاروں کی، پاپوں کی، ایسا جو نرنجن ہے پربھو پتا پرماتما، اس کے ساتھ اس نے اپنے چت کو لگایا ہے، تو جب اس کا چت لگانا اس نرنجن کے ساتھ، اس برہم کے ساتھ، یعنی اپنے چت کو لگا کر کے، تو کیا کیا، ابھید چنتن کیا، اس نرنجن کا، اس برہم کا، اس پرماتما کا ابھید چنتن کیا، ایکیہ چنتن کیا، ویدانت واکیہ کے دوارا एकता का बोध हुआ जब, तो फिर क्या हुआ, कहो कबीर तो अनुभव पाया। उसी समय क्या हुआ, वो जो निरंजन है ना, जिसको कोई किसी का भय नहीं है, ऐसा जो प्रभु पिता परमात्मा ब्रह्म है, उसी समय उसका साक्षात्कार हुआ। जब अभेद चिंतन किया तो अभेद चिंतन करते करते पहले श्रवण किया, फिर मनन किया, फिर निधिध्यासन किया, तो फिर उसको क्या हुआ, सुनिया मन्या मन कीता भाव, पहले श्रवण किया, फिर मनन किया, फिर भाव का अर्थ है निधिध्यासन किया, सुनिया मन्या मन कीता भाव। जब इस प्रकार सुनिया का अर्थ है श्रवण किया वेदांत वाक्यों का, और मनन का अर्थ है युक्ति से उसको पक्का किया, और भाव का अर्थ है निधिध्यासन किया, एक तेल धारावत अपनी वृत्ति को इधर उधर नहीं जाने दिया। जो लोग श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अंतर्गत तीर्थ मल ना हो, अंतर्गत जो उनके अंदर की अवस्था है ना, अंतर्गत करते अंदर की अवस्था, जो अंदर उनके आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक बोध है, उनका अपना स्वरूप है, उस अपने स्वरूप रूपी तीर्थ में नहाते हैं। फिर वो अंतर्गत तीर्थ मल ना हो, उसमें नहाते हैं, यानी जब उसका चिंतन करते हैं ना, तो जो अंदर नहाने का मतलब है कि हम शरीर की शुद्धि करते हैं, तो वो लोग क्या किया, उन्होंने श्रवण मनन निधिध्यासन करते, जो रुकावट थी, प्रतिबंध थी, जो मैल थी ना अविद्या की, अज्ञान की और संस्कारों की, पापों की मैल थी, उसको हटा दिया है। स्नान करने से मैल उतरती है ना, तो उन्होंने कहाँ स्नान किया, अंतर्गत जो उनका आत्मस्वरूप है, उस आत्मस्वरूप का साक्षात किया, उसमें उन्होंने स्नान किया। इसलिए कहते हैं कहो कबीर तो अनुभव पाया। जब चिंतन किया निरंजन का, प्रभु पिता परमात्मा का, तो जिसका चिंतन किया उसी का स्वरूप हो गए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद जो होता है वो ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने ब्रह्म का चिंतन किया है, कैसे चिंतन किया है। एक बात और कहते हैं कबीर जी कि चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया। चीनत पहचान करके, चीनत का अर्थ क्या है, पहचान करके, पहचान यानी श्रवण किया, चीनना कहते हैं ना पहचानना, तो पहले श्रवण करेंगे सुनेंगे तभी पहचाना जाता है, तो पहले श्रवण किया, चीनत यानी पहचान की, श्रवण की, फिर जब श्रवण किया मनन किया, किससे, चीत यानी चित से, अपने चित को लगाया किसके साथ, निरंजन जो प्रभु पिता परमात्मा, उसके साथ लगाया, तो उसके साथ लगाया तो चिंतन कैसे किया। कबीर जी का ही एक और वचन है कि तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। इस प्रकार चिंतन किया, पहले मैं का चिंतन होता था ना कि मैं करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैंने कोठी बनाई, मैंने कार खरीदी, यानी हर चीज़ के ऊपर मैं की मोर लगाते थे। तो जब अर्पित किया ना, अपने आप को समर्पण किया, अहम को छोड़ दिया, देह अध्यास को छोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ, देह अध्यास को छोड़ने से, अहंता को छोड़ने से मैं समाप्त हो गई। जब तक मैं है तब तक तू नहीं ना हो सकता, एक ही तो रहेगा, या मैं या तू। तो कहते जब तक मैं थी तब तक तू नहीं आई। एक और वचन में कहते हैं ऐसा, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। रविदास जी महाराज कहते हैं कि जब हम होते, जब अहम था ना हमारे अंदर, अहम था किसका, शरीर का, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का अहम था, मैं थी, हम अपने आप को स्थूल शरीर मानते थे, मोटा पतला चक्री ब्राह्मण मानते थे, फिर क्या था, अपने आप को सूक्ष्म शरीर, मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं सुखी, मैं दुखी, ऐसा मानते थे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कारण शरीर अपने आप की मैं जो कहाँ लगाई थी, प्रपंच में, तो हम प्रपंच को ही अपना स्वरूप मानते थे। जब हम होते, जब अहम था हमारे में, तब तू ना ही, यानी उस समय जो हमारा स्वरूप है ना, परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, उसका साक्षात्कार नहीं था, अनुभव नहीं होता था। अब हम, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही, मैं ना ही, अब हमारी अहंता कहीं नहीं है, ना शरीर में, ना प्राण में, ना अंतःकरण में, ना इंद्रियों में, कहीं नहीं है, ना हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ना इंद्रिय मानते हैं, ना अंतःकरण मानते हैं, ना प्रपंच मानते हैं, अब तू ही, मैं ना ही, अब त्वम हो तू, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहते हैं ना हम लोग, बोलते हैं ना हर रोज, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सुखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये बोलते हैं, लेकिन अलग होकर के बोलते हैं, अपने आप को अलग मानते हैं, उनको माता पिता सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन अलग मानते हैं, ऐसा कहते हैं भक्त जी के हमारे साथ भी था, कि हम अपने आप को अलग मानते थे, तुमको अलग मानते थे, लेकिन जब चिंतन किया, भगवान की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तब तू तू करने लगे, मैं को छोड़ दिया हमने। मैं को छोड़ने का मतलब क्या हुआ, जो शरीर का देह अध्यास था ना, अहम था, उसको कहाँ, वो कहाँ गया, उसको छोड़ करके तू का मतलब है कि हमने अभेद चिंतन किया, हमने शरीर को छोड़ के, शरीर का देह अध्यास अहम था, उसको छोड़ के त्वम का अर्थ है कि तत्त्वम, मैं का अर्थ है तत्त्वम, जब तुम और मैं दोनों अलाते हैं तो तत् और त्वम दो पदार्थ आ जाते हैं, तत् का अर्थ है ईश्वर, तुम का अर्थ है जीव, तो पहले मैं का अर्थ है कि हम जीवपणे का अभिमान करके चिंतन करते थे, तो तत् जो ईश्वर है वो नहीं दिखता था, जब हमने तत् और त्वम का अभेद चिंतन किया, एकता का चिंतन किया, उसके विरोधी धर्मों को छोड़ करके ऐक्य चिंतन किया, तो तू तू करता तू हुआ, फिर क्या हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, अब मेरे में अहम नहीं है, जब तुम का चिंतन किया, यानी ब्रह्म का, ईश्वर अभेद चिंतन किया दोनों का, तो जीव ईश्वर पना दोनों समाप्त हो गए, अब तू ही मैं ना ही, अब केवल मैं जो शरीर की थी, प्राणों की थी, अहंता वो नहीं है, या मैं का अर्थ है ममता नहीं है, पदार्थों की ममता भी नहीं है, शरीर की अहंता भी नहीं है, कैसे हो गए, मुझ में रहा न हूँ, अब अहंता नहीं है, देह अध्यास नहीं है, जब आपा पर का मिट गया, जब अहंता और ममता का नाश हुआ, आपा और पर का, अपने आप को अहंता थी, शरीर मान के, इंद्रिय मान के, इंद्रियों के धर्म वाला मान के, आपा तो अपना चिंतन तो करते थे लेकिन शरीर रूप में करते थे, और दूसरे का चिंतन पदार्थ रूप में करते थे, शरीर के साथ संबंध यानी ममता रूप में करते थे, अब ना अहंता है ना ममता है, आपा और परका, अपना और पराया दोनों समाप्त हो गए, आपा परका मिट गया, दोनों ही समाप्त हो गए, ना अहंता है ना ममता है, اب کیا ہوا، جت دیکھا تت تو جہاں دیکھتا ہوں، اب میرے کو سروپ کا ہی چنتن ہوتا ہے۔ تو کبیر جی مہاراج کہتے ہیں جس جگیاسو نے گرو کے پاس جا کر کے شرون کیا، چینت شرون کر کے منن کیا، چیت یعنی اپنے چت کو نرنجن، اس پربھو پتا پرماتما برہم کے ساتھ ابھید کر کے چنتن کیا، اس کو کیا ہوا، انبھو پایا، اس کو ساکشاتکار ہو گیا، اس کو درشن ہو گیا۔ یہ کبیر جی مہاراج جی نے پاون شبد ہمارے کو دیا۔ اس کے بعد دوسرا شبد ہے گوڑی کبیر جی، من کا سبھاؤ منہ بیاپی منہ مار کون سدھ تھاپی، کون سو من جو من مار ہے، من کو مار کہو کس تار ہے، رہاؤ من انتر بولے سب کوئی، من مارے بن بھکت نہ ہوئی، کہو کبیر جو جانے بھیو من مدھو سودن ترپون دیو۔ کبیر جی مہاراج، دو پنڈت جو نا وہ جھگڑ رہے تھے، تو کبیر جی بھی وہیں تھے۔ وہ جھگڑتے کس لیے تھے؟ وہ کہتے تھے، ایک کہتا تھا کہ من کو مارنا چاہیے، جیو بھاو کو مارنا چاہیے، اور دوسرا جو پنڈت تھا وہ کہہ رہا تھا کہ من کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، من کو نہیں مارنے کی ضرورت، من کا جو سنکلپ وکلپ سے ہم سنسار کا چنتن کرتے ہیں اس کو چھوڑنا، یعنی دیہ ادھیاس کو چھوڑنا چاہیے۔ تو کبیر جی مہاراج جی نے ان دونوں کے بیچ میں آ گئے کبیر جی مہاراج، تو اتھوا کوئی جوگی آ گیا کبیر جی کے پاس۔ جوگی لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہٹھ جوگی ہوتے ہیں وہ پتنجلی یوگ کے انوسار چنتن کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ من کی برتی کو روکنا چاہیے، من کا نرودھ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کبیر جی کو کہ یدی بھکتی دوارا آپ اپنے سروپ کو پراپت کرنا چاہتے ہو تو پہلے من کو مارو، کبیر جی کو کہا۔ تو کبیر جی کہنے لگے کہ من کو تو کبھی مارا ہی نہیں جا سکتا جوگی جی، من نہیں کبھی مرتا، من کو مار کر کے آپ کہو کہ ہم کوئی آنند لے لیں گے، سدھی پراپت کریں گے تو نہیں ہو سکتی، من نہیں مر سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ من مارے بن بھکت نہ ہوئی، جدی آپ ایسا ہٹ کرتے ہو کہ من جب تک نہیں مرتا تب تک بھکتی نہیں ہوتی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جس نے بھی بھکتی کے دوارا سدھی پائی ہے انہیں من کو مار کے نہیں پائی۔ جوگی کہنے لگا کہ آپ کا تاتپریہ کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہو، آپ ہمارے کو اس کا وستار سے بتائیے کہ آپ کا تاتپریہ کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جب تک من نہیں مرے گا تب تک بھکتی نہیں ہوتی۔ تو کبیر جی مہاراج کہتے ہیں کہ من کا سبھاؤ منہ ویاپی، من کا سبھاؤ یعنی سروپ کیا ہے، جوگی کو کہتے ہیں من کہتے کس کو ہے، تو سنکلپ وکلپ ہی منہا، سنکلپ اور وکلپ کو کہتے ہیں من۔ جو ہم کوئی سنکلپ کرتے ہیں نا، اچھا وکلپ سنکلپ ہماری پرتی اٹھتی رہتی ہے، یہ کریں یہ کریں یہ نہ کریں، اس کو کہتے ہیں من، من کا سبھاؤ۔ تو کہتے ہیں من کا جو سبھاؤ ہے نا، سروپ ہے، وہ کیسا ہے، جیسے اگنی ہوتی ہے نا، اگنی میں کیا ہوتا ہے، اسن، اسن ہوتی ہے نا، گرمی، داہکتا ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اگنی کی داہکتا نکال دی جائے تو اگنی بچے گی، اگنی سے سی اسن نکال دو گرمی تو اگنی کہاں ہے، نہیں بچے گی، سماپت ہو جائے گی نا۔ اگنی کا سروپ کیا ہے، داہک، اس میں اشنتا ہونی، گرمی، تو جدی وہ اس میں سے نکال دو تو اگنی بچے گی، نہیں بچے گی، اگنی ہی سماپت ہو جائے گی۔ تو من کا سروپ کیا ہے، سنکلپ اور وکلپ، संकल्प विकल्प जो मन है इसको यदि समाप्त कर दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तो मन ही नहीं जब बचेगा तो क्या होगा, शरीर भी मृतक तुल्य हो जाएगा। मन से ही वेद मापतव्यम, मन के द्वारा ही कहते जाना जाता है। जब ये यहाँ पर कबीर जी का कहने का मतलब है कि मन का स्वभाव, जो मन का स्वरूप है ना, वो मन में व्याप्त है। जब उसका स्वरूप निकाल दोगे तो मन नहीं बचेगा। अग्नि से दाहकता प्रकाशता निकाल दोगे तो अग्नि जैसे नहीं बच सकती। अग्नि का क्या स्वरूप है, जो दाहकता और प्रकाशता, यही तो स्वरूप है। प्रकाश करना और जलाना, वो दोनों निकाल दो तो अग्नि कहाँ बचेगी, नहीं बचेगी। इसलिए कहते हैं मन का जो स्वभाव है, अथवा मन का अर्थ क्या है, अंतःकरण विशिष्ट जीव। और पंडित कह रहे थे जीव को मार देना चाहिए। मन का स्वभाव का अर्थ है स्वरूप। स्वरूप कैसा है उसका, अंतःकरण विशिष्ट जीव, उसका स्वरूप क्या है, स्वभाव यानी स्वरूप क्या है विशिष्ट, उसका स्वरूप है सत्यत आनंद। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मन से जीव भी लेते हैं, उसका स्वरूप है सत्यत आनंद। तो सत्यत आनंद यदि नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, ना उसका कभी अभाव हो ही सकता है। सत्यत आनंद का कभी भी अभाव नहीं हो सकता। तो इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं, क्योंकि जीव कैसा है, ब्रह्म के साथ उसका अभेद है। ब्रह्म में सत्यत आनंद है, जीव भी, क्योंकि ईश्वर का अंश है। तो लेकिन कहते हैं कि ब्रह्म अनादि है तो जीव भी अनादि है, ना उसका आदि है ना अंत है। वैसे संसार में छह चीजें अनादि मानी जाती है। कौन कौन सी, एक तो ब्रह्म और दूसरी माया, और तीसरा कौन है, ब्रह्म और माया का संबंध, ये भी अनादि है। जीव भी अनादि है, ईश्वर ही अनादि है, और जीव ईश्वर का भेद भी अनादि है। ये छह चीजें अनादि है, यानी इनका कभी पता नहीं कब से चली आ रही हैं। अनादि हैं छह, लेकिन इसमें से पांच ऐसी हैं जिनका अंत हो जाता है। अनादि तो छह ही हैं, कब से बनी है मालूम नहीं है, लेकिन पांच का अंत हो जाता है। एक कैसा है, ब्रह्म, उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो कैसा है, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, यानी उसका कभी अंत नहीं होता, अंत से रहित है, यानी अनादि है और अनंत है। तो कहते हैं जीव मन का स्वभाव है ना, जो स्वरूप, वो मन में व्याप्त है। जीव का स्वरूप कैसा है, सत्यत आनंद, तो सत्यत आनंद को नहीं हटा सकते, क्योंकि हटाएंगे तो, या जो संकल्प विकल्प मन का स्वरूप है, यदि उसको हटा दोगे तो मन ही समाप्त हो जाएगा। तो मन है मार, जब मन ही समाप्त हो गया तो फिर कवन सिद्ध था पी। आप कहते जोगी जी बताइए कि यदि आपने मन के स्वरूप को ही हटा दिया तो अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने मन का स्वरूप ही समाप्त करके सिद्धि पाई हो, नहीं पा सकता। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये शास्त्र भी कहता है कि मन ही जीव के कारण है, किसका, बंध और मोक्ष का। यानी बंधन भी मन से होता है, मोक्ष भी मन से होती है। तो यदि मन को आप मार दोगे, उसका स्वभाव यानी स्वरूप समाप्त कर दोगे, तो फिर आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती। मने मार कवन सिद्ध थापि, बताइए अभी तक कौन ऐसा आदमी है जिसने मन के स्वरूप को समाप्त करके सिद्धि पाई है, नहीं पा सकता। मम्मा मन से काज है, मन साध्य सिद्ध होए, ये भी कबीर जी महाराज ही कहते हैं कि मन के साथ हमारा एक कार्य है कि मन साध्य सिद्धि होए। मन को साधने से सिद्धि प्राप्त होती है, मन को मारने से नहीं होती है। मारने का अर्थ उसके स्वरूप को समाप्त करना, यानी मन को मार के नहीं, मन को साध के। साधने का मतलब है कि उसकी शुद्धि करके, उसमें जो मलिनता है ना उसको हटा करके फिर सिद्धि प्राप्त होती है। तो फिर कहते हैं कि योगी ने कहा कि जो मुनि लोग होते हैं वो मन को मारते हैं, मुनि लोग जो होते हैं वो मन को मार देते हैं। तो कबीर जी महाराज कहते हैं कमन सो मोन जो मन मारे, ऐसा कौन मुनि है जो मन को मारता है, मन को मार कहो किस तारे, कौन से कहता मुनि है जिसने मन को मारा है। और मन को जानी मन के स्वभाव को, या जीव का जो स्वभाव है, मन जानी अंतःकरण, तो अंतःकरण विशिष्ट चेतन को कहते हैं जीव। ऐसा कौन सा मुनि है जो इस अपने स्वरूप को नष्ट करना चाहता है, मारना नहीं चाहता प्राप्त करना चाहता है, हाँ जो इसके बीच में विरोध है ना उसको समाप्त करता है, जो मुनि होता है अंतःकरण विशिष्ट चेतन को जीव कहते हैं ना, तो जो अंतःकरण उपाधि है उसको छोड़ना चाहते हैं मुनि लोग, इसलिए कहा जाता है कि वो अपने मन को मार देते हैं। मन को मारने का अर्थ है कि जो उपाधि है ना उसको छोड़ करके चिंतन करते हैं, उसका स्वरूप से नष्ट नहीं करते, स्वरूप तो रहता है। अर्थात वो ऐसा कोई मुनि नहीं है जो मन को मार करके, तो जिसने कहते मन को समाप्त कर दिया, वो कहो किस तारे, यानी दूसरे को यदि उपदेश करना है तो कैसे करेगा, दूसरे को मार्गदर्शन करना है तो कैसे करेगा, यानी उपाधि में रह करके ही करेगा, उपाधि विशिष्ट रहेगा तभी करेगा। दूसरे के उपदेश निमित्त रहते हैं और मन का जो आसक्ति है उसको छोड़ देते हैं। तो कबीर जी महाराज कहते हैं अभी तक जो कहता है ना मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भक्त न होई। ये कहते हैं मन को, दूसरे को जो कहता मन को मारना चाहिए, ये मन अंतर, ये मन के अंदर ही है, मन के बाहर नहीं है। मन अंतर बोले सब कोई, अथवा जब तक जीवात्मा है ना अंदर तभी तक ही कोई बोलते हैं, जब तक जीव आत्मा रहती है तभी तक चेष्टा होती है शरीर की, जब जीवात्मा चले जाती है तो फिर क्या हो जाता है, मृतक के समान हो जाता है। तो मन अंतर बोले सब कोई, इसलिए कहते हैं मन मारे बिन भक्त न होई। जो कहते हैं कि बिना मन मारे भक्ति नहीं होती, वो उनका तात्पर्य मन का समाप्त करना नहीं होता, मन के स्वरूप को नहीं मारना होता, वो मन की शुद्धि करण का अर्थ होता है। मन की जो जी चेतन के साथ जो उपाधि है ना उसको हटाना होता है, उसको हटाना ही मन का मारना है, मन को स्वरूप से नहीं मारना। जो भ्रांति है ना, मन के धर्मों को अपने में मानना, अपने धर्मों को मन में मानना, ये जो दुविधा है ना बीच में, उसको हटाना है। कौन सो मन जो मन मारे, वो कौन सा है, ऐसा कौन है जो मन की दुविधा को दूर करता है, यानी वो मन के और चेतन के अंदर जो भ्रांति है ना, अध्यास है, अध्यास के द्वारा मन को अपना आप मानते हैं और आत्मा को मन मानते हैं, इस भ्रांति को दूर करते हैं, इसलिए वो कह देते हैं कि जब तक मन को नहीं मारते तब तक भक्ति नहीं होती, यानी अभेद चिंतन नहीं होता, अनन्य भक्ति नहीं होती, एकत्व चिंतन नहीं कर सकते। जब तक भ्रांति है तो हम चिंतन करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन द्वैत में करेंगे। अनन्य भक्ति, भगवान कृष्ण कहते मेरे को चार लोग याद करते हैं, अर्थी भी याद करता है, जिज्ञासु भी याद करता है, दुखी भी याद करता है, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी सब करते हैं ना, लेकिन मेरे को चारों ही प्रिय हैं, चारों मेरे को प्रिय हैं। कौन सबसे प्रिय कौन है? ज्ञानी, ज्ञानी मेरे को प्रिय है। क्यों प्रिय है ज्ञानी मेरे को? एक भक्तिर विशिष्यते, एकत्व भक्ति करता है, एकत्व भक्ति जो ज्ञानी होता है वो एकत्व भक्ति का अर्थ क्या है? जो भ्रांति है ना स्वामी सेवक भाव को हटा करके एकत्व भक्ति करता है वो मेरे को प्रिय है। तो ये कहते हैं कि मन अंतर बोले सब कोई, ये जो कहते हैं मुनि लोग वो मन के अंदर ही, मन के स्वभाव से ही कहते हैं। वो कहते हैं मन मारे बिन भक्त न होई। जब तक आप भ्रांति को छोड़ के एकत्व का चिंतन नहीं करते तब तक भक्ति की सफलता नहीं है। यानी पराभक्ति, प्रेमा भक्ति, या कहते हैं कि हाँ एक बात तो कहते ठीक है कि संसार की ओर से रोकना, संसार के विषयों की ओर से रोकना, ये क्या है? श्रवणा आदि में लगाना, संसार के विषयों का चिंतन है उससे मन को रोक के श्रवण मनन निधिध्यासन में लगाना, ये है अपराभक्ति। ये नहीं होती मन मारे बिन भक्त न होई का अर्थ क्या है? कि मन को संसार की ओर से हटा करके श्रवण मनन निधिध्यासन में जब तक नहीं लगाएंगे तो ये नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। ये कहते आपकी बात मान सकते हैं कि जब तक संसार का चिंतन मन में चल रहा है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। उसका मारने का अर्थ है उसको संसार की विषयों के चिंतन से रोकना, लेकिन समाप्त करना नहीं। तो कहते हैं कबीर जी महाराज, कहो कबीर जो जाने भेव, जो इस भेद को जान जाता है, मन को मारने का जो भेद है, यानी जीवत भाव जो हमारे अंदर जीवपना है ना, मन के साथ अंतःकरण के साथ जो वशिष्ठपना है उसको जो जान जाता है, जिसको विवेक हो जाता है कि अंतःकरण अलग है, चेतन अलग है, जो इस भेद को जान जाता है, जो अध्यास को छोड़ देता है, जो जाने भेव, जो इस भेद को जानता है, मन मधुसूदन कहते, वो जो जीव है वो साक्षात मधुसूदन है। मधुसूदन का अर्थ परमात्मा है, ब्रह्म है। और त्रिपवन देव जो मधुसूदन है, जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो तीन भवन का देव है, प्रकाशक है कि नहीं? देव यानी प्रकाशक, संसार के तीनों भवनों को प्रकाशित करता है कि नहीं? तीन भवन में एको जोगी, यानी तीन भवन में व्याप्त है कि नहीं? तीन गुणा में व्याप्या, ये संसार की दशा है। परमात्मा के प्यारे जो जिज्ञासु है उनकी नहीं, और संसार के जीव तीन गुणों के अंदर वर्तते हैं। तो जो कहते हैं जिसने इस भेद को जान लिया ना, भ्रांति को जिसने काट दिया, अध्यास को छोड़ दिया, वो ऐसा मन का अर्थ है जीव, वो कैसा है? मधुसूदन है, वो जानता है, उसको मालूम है, वो तीन भवन का देव है, प्रकाशक है। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज ने उस योगी के द्वारा हम लोगों को स्पष्ट बताया कि मन को मारे, लोग कहते हैं महाराज मन कैसे मरेगा, मन कैसे समाप्त होगा? तो मन का स्वभाव नहीं समाप्त करना, मन का शुद्धिकरण करना है, मन का जो चेतन के साथ अध्यास है ना उसको छोड़ना ही मन का मारना है। ऐसे हम चिंतन जब करेंगे देह अध्यास को छोड़ के, यानी प्रपंच जो कल्पित है ना उस कल्पना को छोड़ेंगे, मिथ्या को छोड़ेंगे, हमारे स्वरूप का जो सत्यत्व है उसका चिंतन करेंगे, तो फिर इस संसार में सारा कुछ करते हुए हम अपने स्वरूप का आनंद यानी जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सतगुरु देव महाराज की जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय।